કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. આજ સુબહ કી ભાગતમ કક્ષા મેં આપ સબકા બહુત બહુત સ્વાગત હૈ આભાર હૈ. તો પહેલે કીર્તન શરૂ કરેંગે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. બાતે બંધ, અભી બાતે બંધ. ઓર પિછલી દફા એક શિકાયત આઈ થી કે સબકો બોલીએ કે મોબાઈલ અપને બંધ કર દે યા ફિર સ્લો કર દે. બિલકુલ, ક્યોંકિ ઉસમે ક્યા હૈ કે બાતે કરને સે સાથ વાલા જો હૈ વો ડિસ્ટર્બ હોતા હૈ. તો પિછલી દફા બોલા થા કિસી ને, કિસી માતાજી ને, કે આપ અનાઉન્સ ક્યા કરો. ઠીક હૈ, અનાઉન્સ કર દેતે હૈ. વૈસે મુજે નહીં સુનાઈ દેતી આવાજ વહાં સે. અરે
જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, ગોપી જન વલ્લભ ગ્રીવર ધારી, ગોપી જન વલ્લભ ગ્રીવર ધારી, યશોધા નંદન બ્રજ જન રંજન, યશોધા નંદન બ્રજ જન રંજન, યમુના તીર બંચારી, યમુના તીર બંચારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, ગોપી જન વલ્લભ ગ્રીવર ધારી, ગોપી જન વલ્લભ ગ્રીવર ધારી, યશોધા નંદન બ્રજ જન રંજન, યશોધા નંદન બ્રજ જન રંજન, યશોધા નંદન બ્રજ જન રંજન, યમુના તીર બંચારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Shri Prabhupada. Krishna Balaram ki jai, Gaur Nitai ki jai, Radha Shyam Sundar ki jai.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namo Srimate Bhakti Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Niravishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine
Jai Prabhupada
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana Gaura Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ram Ram Hare Hare
Jai Radha Shyam Sundar Lalta Devi Katha Devi ki Jai Krishna Var Ram ki Jai
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare हरे हरे जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवराज काचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की इस कॉन्फोंड आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय द्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की ग्रंथ राशिमित भागवतम की ऑल ग्लोरियस टू यू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरियस टू यू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग ऑल ग्लोरियस श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेयं दधाति स्वपदान्तिक वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वांछाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 5 श्लोक संख्या है 28। देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान से याचना। पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले भी कई दफा सभी वक्तों ने बताया भी होगा कि देवताओं और दानवों का आपस में युद्ध भी चल रहा था और दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप भी दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी शक्ति बहुत घट गई थी, लक्ष्मी विहीन हो गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सबसे बड़े हैं इस संसार में हमारे लिए। तो वो सब इकट्ठे होकर के फिर क्षीर सागर में गए और भगवान विष्णु की उनको रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, और वहां ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की श्री भगवान से। ऐसा कहा गया है कि जो क्षीर सागर है इसी भौतिक जगत में कहीं है, हमें नजर नहीं आता है, हमें नजर नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं है। बहुत सारी चीजें हमें नजर नहीं आती हैं लेकिन होती हैं। सो और कोई भी आदमी बिना योग्यता के भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकता है। तो जितने भी देवता गए हैं, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी, उन्होंने प्रार्थना तो की है लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। आकाशवाणी से जरूर वार्ता हो जाती है कई दफा। तो जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है उसी के संदर्भ में अगला श्लोक हम आज का पढ़ेंगे। सबसे पहले भगवान को थोड़ा प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नर्म चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उद्रियेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति निष्ठकी। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। मैं कई बार ये बोलता हूं कि कुछ लोग सोए हुए हैं, उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। ये प्रीत करण की रीत नहीं, ये भगवान से हम प्रीत करना चाहते हैं, प्रेम डेली हम पढ़ते हैं है? कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, तो ये प्रेम करने की रीत थोड़ी है। वो जागत है और तुम सोबत हो गर्दन लटका करके, बहुत सारे लोग पीछे मुड़ के देखो सोए हुए हैं, है ना, तो ये ठीक नहीं है। क्या श्लोक संकट है? अयस्य चक्रम त्वजेरमानम मनोमयम पंचदशार्माशु त्रिनावि विदुच्चलमष्टनेमी यद् अक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये। अजस्य चक्रं त्वजेर्यमानम् मनोमयं पञ्चदशार्माशु त्रिणावि विदुच्चलम् अष्टनेमि यद् यद अक्षमाउस्तम मृतम प्रपद्ये। पढ़िए दुराइए।
अजस्य चक्रम त्वजेर्यमानम् मनोमयं पञ्चदशारमाशु तृणाविविद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहोस्तं मृतं प्रपद्ये। अजस्य चक्रं त्वज्येर्यमानम् मनोमयं पञ्चदशारमाशु तृणाविद्युच्चलम् अष्टनेमि यदक्षमाहोस्तमरतं प्रपद्ये। अजस्य चक्रं त्वज्येर्यमानम् मनोमयं पञ्चदशारमाशु तृणाविद्युच्चलम् अष्टनेमि यदक्षमाहोस्तं मृतं प्रपद्ये। अजस्य चक्रं त्वज्येर्यमानम् मनो पञ्चदशारम् तृणाविद्युच्चलम् अष्टनेमि यदक्षमाहोस्तमृतं प्रपद्ये। माताजी से बोलिए। अजस्य चक्रं त्वजैर्यमानम् मनोमयं पञ्चदशारमाशु त्रिणाविद्युच्चलम् अष्टनेमि यदक्षमाहोस्तमृतं प्रपद्ये। अजस्य चक्रम् चक्रम वतीर्यमानम् मनोमयं पञ्चदशारमाशु तृणाविद्युच्चलम् अष्टनेमि यदक्षमाहोस्तमृतं प्रपद्ये।
शब्दार्थ। अजस्य जीव का चक्रम पहिए को, इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर को, जन्म मृत्यु का पहिया है वो, काल का पहिया। तू लेकिन अजया श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा इर्यमानम अत्यंत वेग के साथ घूमती हुई मनहामयम जो मुख्यतः मन पर आधारित मानसिक सृष्टि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। पंचदश पंद्रह अरम तीलियों वाला, जैसे आप कभी साइकिल देखते ना, तो साइकिल में भी वो लोहे की तीलियां लगी होती हैं, या रथ के ऊपर भी लगाते हैं शो के लिए, जिससे वो उसका व्हील जो है वो ठीक रहे, टेढ़ा ना हो। तो वो यहां पर तीलियां कहा गया है।
आशु शीघ्र ही त्रिनाभि तीन नाभियों वाला भौतिक प्रकृति के तीन गुणों वाला विद्युत बिजली की भांति। हाँ, इसका मतलब है बिजली, हम बोलते हैं जी बिजली तो अभी दीन हुई है, कुछ 100 साल पहले 200 साल पहले भी बिजली थी, इलेक्ट्रिसिटी पहले भी थी। बानासुर की कथा भी सुनी होगी आपने कृष्णा बुक में, तो वहां पर भी इस पूरे एरिए में बिजली के वायर लगा रखे थे और ऊपर कई किलोमीटर तक पक्षी भी नहीं जा सकते थे पार करके उसके महल के अंदर। तो इन सब से पता चलता है कि हमारी वैदिक संस्कृति बहुत उच्च है पहले से ही। चलम गतिमान, अष्टनेमी आठ नेमियों से बनी या आठ प्रिधियों से बनी। प्रिधियां मतलब पहिए हो गए ना, प्रिधिया से बोलते ना, जब ज्योमेट्री में पढ़ते थे हम लोग तो प्रिधि नापो, इस गोल चक्कर की प्रिधि नापो, तो वो प्रिधि। श्री भगवान की आठ बहिरंगी शक्तियां भूमि रपो नलो वायु इत्यादि यत यो अक्षम धूरी आहु वे कहते हैं तम उनको ऋतम सत्य प्रपद्ये हम नमस्कार करें। मैं पढ़ूंगा आप सुनिए पहले। भौतिक कार्यों के चक्कर में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 अरे या तीलियां बनाते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व गुण रजस गुण और तमगुण कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार इस पहिए की बाहरी प्रधि बनाते हैं। बहिरंगी भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार ये पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार पर अर्थात श्री भगवान के चारों ओर घूमता है। जैसे पृथ्वी जो घूमती है इसके लिए भी ये कल्पना की गई कि किली होती है, किली ऐसे टेढ़ी सीधी नहीं है, टेढ़ी किली है उसके ऊपर पृथ्वी घूमती है, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं। तो ये भी ये धुरी बताया गया यहां पर। इस प्रकार ये पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार या एक्सल बोलते हैं साइकिलों में, मोटरसाइकिल में भी, कारों में भी एक्सल होते हैं, वो एक्सल। इस प्रकार ये पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार अर्थात श्री भगवान के चारों ओर घूमता है। जो परमात्मा तथा चरम सत्य हैं हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। भौतिक कार्यों के चक्कर में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 अरे या तीलियां बनाते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस तथा तमस कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं और प्रकृति के 8 अवयव
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्याहंकार इस पहिए की भारी प्रीति बनाते हैं। बहिरंगी भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार ये पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार अर्थात श्री भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा चरम सत्य है। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। यहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यहां पर जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, जैसे भगवत गीता में तो बताया ना कि ये शरीर एक रथ है ना, तो देखा जाए तो ये मशीन है, पूरा रथ ही है। रथ के ऊपर आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं, और किन किन चीजों से बना है वो सारी बातें यहां पर बता दी गई है, पंच तत्ववादी वगैरह। लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी ने क्या कहा है, भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है, या शरीर को रथ नहीं कहा गया यहां पर, मानसिक रथ, भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा है। मतलब कल्पना एक हमें समझाने के लिए, जिसे हम समझ सके, एक अलंकार, जैसे अलंकारिक शब्द होते हैं ना, तो अलंकार यहां पर बताया गया है। भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है, इसमें 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां तथा 5 ज्ञान इंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 अरे बनाते हैं। प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण कार्यकलापों के केंद्र बिंदु है। जितना भी एक्चुअली यहां पर जन्म मृत्यु का भी बताया गया कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, यह भी बताने की कोशिश की, और कैसे फंसते हैं, क्यों फंसते हैं, यह बताया गया है श्लोक में। एक दफा इस भौतिक जगत में हम फंस गए ना, उसके बाद फिर निकलना और मुश्किल हो जाता है, और फंसते जाते हैं, और फंसते जाते हैं, और फंसते जाते हैं। और भौतिक जगत में आते क्यों हैं, ये भी अपने कर्मों अनुसार, अपने कर्म फल के अनुसार ही आते हैं हम। नहीं तो कोई भी पिता अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकता है। कृष्ण हमारे माता पिता हैं, हमारे वैदिक शास्त्र भी ये बोलते हैं, तुमैव माताश्च पिताश्च तमैव, तमैव बंधु सखा तमैव, तमैव विद्याश्च द्रवणम तमैव, तमैव सर्वम मम देव देव। हमारे माता पिता धन सब कुछ, कृष्ण ही हमारी माता, कृष्ण ही हमारे पिता, कृष्ण हमारे बंधु, सब कुछ वही हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि उनके आश्रित बच्चे जो हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाए और दुख उठाए जाकर के, वो नहीं चाहते हैं। वो तो उल्टा चाहते हैं कि इनको दोबारा वापस लाया जाए किसी तरीके से, भगवद गीता सुना करके, प्रभुपाद जी जैसे संतों को भेज करके। तो यहां पर बताया गया है कि एक दफा हम आगे कर्म करते हैं, और कर्म जो हैं वो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन ही, तीनों के अंदर ही करते हैं हम। कभी ज्यादा तमोगुण से में काम करते हैं, कभी सत्व रजब मिक्स हो जाता है, कभी 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 सत्व गुण में भी आ जाते हैं, ऐसा कर्म भी करते हैं। ये कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं, सत्व रजस तमस, सेंट्रल पॉइंट जिसको बोलते हैं। और प्रकृति के 8 अवयव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार इस पहिए की भारी प्रीति है। इसके बारे में
पढ़ेंगे, अभी सारा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसी पे ये कि भारी प्रीति बनाते हैं, भरंगा भक्ति भौतिक शक्ति इस पहिये को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। फिर तो घुमाते रहते, एक दफा आगे तो फिर घुमाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ब्रह्मंड भ्रमिते कौन है भाग्यवान जी, है ना, अरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं इधर उधर। कोई एक बिरला जो है वो कभी कभी गुरु के शरण में, भक्तों के शरण में आ जाता है तो उसका बेड़ा पार हो सकता है, बाकी चांसेस बहुत कम होते हैं। एक दफा फंस गए तो फिर फंस के ही रह गए। भरंगा भौतिक शक्ति इस पहिये को भौतिक शक्ति की भांति, विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार ये पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार अर्थात श्री भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा चरम सत्य हैं। हम इन्हें साधारण नमस्कार करेंगे तो हम यहां पर कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां और प्राण, इसका भी व्याख्या पढ़ेंगे हम लोग। पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यहां पर अलंकारिक ढंग से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 7:5 में कहा गया। वैसे जितने भी वैदिक ग्रंथ है ना, वो एक्चुअली बनाए इसलिए हैं कि हमें इस बंधन से निकलना है बाहर, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, इन भौतिक बंधनों से बाहर निकलना है। अप्रियम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो यजेतम धार्यते जगत। सारा संसार इसलिए गतिशील है क्योंकि श्री भगवान का अंश रूप जीव भौतिक शक्ति का उपयोग करता है। वैसे संसार का मतलब ही क्या होता है? संसार का मतलब है गतिशील। संसार का जो मीनिंग है यह है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इस ग्रह में कभी उस लोक में कभी उस लोक में चलायमान, इसको संसार कहते हैं। तो सारा संसार इसलिए गतिशील है क्योंकि श्री भगवान का अंश रूप जीव भौतिक शक्ति का उपयोग करता है। भौतिक शक्ति के पास में रहकर जीवात्मा श्री भगवान के निर्देशन में जन्म तथा मृत्यु के चक्कर पर आरूढ़ होकर चक्कर लगाता रहता है। जन्म मृत्यु रूपी जो गाड़ी समझ लो, उसके ऊपर बैठ करके फिर चक्कर लगाता है 84 लाख जोनियों में, कभी देवता कभी मनुष्य कभी कोई पशु कभी पक्षी कुछ भी चक्कर लगाता है, और बड़ी तेजी से। इसका केंद्र बिंदु परमात्मा है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यंत्ररूढानि मायया। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों की गति का निर्देशन कर रहे हैं। जो मानव भौतिक शक्ति से बने किसी यंत्र पर आसीन है, जीव का भौतिक शरीर बद्ध जीव के कार्यकलापों का परिणाम है। जो हम कार्य करेंगे उसी के परिणाम स्वरूप हमें ये शरीर मिलते हैं, कर्म फल। और चूंकि इसको आश्रय देने वाले परमात्मा है, कराएगा तो परमात्मा ही, बिना परमात्मा के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें निर्देश देने वाले ही चाहते हम हैं, निर्देश कराते पूरा भगवान है, परमात्मा। परमात्मा जो भगवान के है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सब, इतने तो तीन शब्द हैं। तो परमात्मा जो है, परमात्मा भगवान सब एक ही, कई लोग बोलते हैं वही परमात्मा वही भगवान, नहीं है, या तीन स्थितियां बताई गई हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान। परमात्मा जो है सारे ब्रह्मांडों में रहता है, और एक प्रकार का हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, इसमें परमात्मा रूप है, और एक तरफ जीवात्मा एक तरफ परमात्मा, वही हमें वाच करते हैं। हमें स्वतंत्रता दे रखी है, आजादी दे रखी है, कुछ सारी नहीं, कुछ लिमिटेड आजादी है, उसके अनुसार हम कर्म कर सकते हैं और उसका फल भी चख सकते हैं, और परमात्मा जो है वो दिखते रहते हैं ये क्या कर रहा है। परमात्मा की तरफ तो हम देखते भी नहीं है, पहली तरफ मुंह कर लेते हैं, और परमात्मा हमेशा ये चाहते हैं कि मेरी तरफ देखे तो सही है, लेकिन हम देखते नहीं हैं। तो जीव का भौतिक शरीर बद्ध जीव के कार्यकलापों का परिणाम है, और चूंकि इसको आश्रय देने वाले परमात्मा हैं, अतः परमात्मा ही वास्तविक हैं, इसलिए हमें चाहिए कि केंद्रस्थ सत्य को सादर नमस्कार करें, मतलब भगवान को नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को इस भौतिक जगत के कार्यकलापों में कलापों से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस भौतिक जगत में भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं, खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, नदियां, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, पता नहीं क्या क्या मिलते हैं। जब गांव से हम नए नए दिल्ली में आए थे तो वो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, उनको ही देखते रहते थे 15 मिनट तक कि क्या नया अजूबा है ना। आजकल तो आम हो गई बात, अभी तो गांव में भी बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं, लेकिन उस समय बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था, तो हम उसमें भरमा जाते थे। तो वही यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक जगत के कार्यकलापों से हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, हमें फिर भी निकलना है, यहां से फंसना नहीं है इसके बीच में। और केंद्रस्थ बिंदु अर्थात जो केंद्रस्थ बिंदु है, सेंट्रल बिंदु जो है, सेंट्रल पॉइंट, वो क्या है? परम सत्य को, परम सत्य है भगवान, उसको भूलना नहीं चाहिए। यहां पर ब्रह्मा जी ने यही उपदेश दिया है कि भगवान को कभी नहीं भूलिए। प्रभुपाद जी भी बार बार ये कहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कभी भी कृष्ण को ना भूलिए, हमेशा 24 घंटे भगवान को याद रखिए। तो यहां पर ये जो श्लोक है अलंकारिक ढंग से बताया गया है, यहां पर मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्कर बताया गया है। तो यहां पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा होता है। आगे मैं कुछ लिख के लाया हूं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे इंग्लिश में प्रभुपाद जी एक लाइन में ये पढ़ देता हूं ताकि जिसको ना भी समझ आए तो वो समझ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का जो है ना बड़ा आसान समझ में आ गया। पहले भी ये श्लोक मैंने तात्पर्य कई बार पढ़ा, इसको मैंने मेरी समझ नहीं आ रहा था, जब इंग्लिश का पढ़ा तो समझ में आ गया। तो इसलिए आप, मैं पहले आप सबके लिए भी पढ़ देता हूं। इन द साइकिल ऑफ मटीरियल एक्टिविटीज द मटीरियल बॉडी रिसेंबल्स द व्हील ऑफ मेंटल चैरिट। ये काल्पनिक रथ है, इसी के पहिए बताए गए हैं। भौतिक शरीर की तुलना यहां पर रथ के पहियों से की गई है, हालांकि ऐसा देखने में नहीं मिलता है। अब देखोगे कि कहां है रथ के पहिए, यहां पर नजर नहीं आएंगे। ये इसके रथ की तरह पहिए भी बताए गए हैं, वो क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण मिलकर रथ के 15 अरे बनते हैं। हब तो अलग चीज हो, दूरी होगी, हैं? हाँ हाँ, तो 15 अरे बनते हैं, बनाते हैं। इंद्रियों को संस्कृत भाषा में कहते हैं करण, इंद्रिय का अर्थ है संस्कृत में करण। इंद्रिय शरीर का अव्यव है, इंद्रिय शरीर का इनका ही भाग है। इंद्रिय शरीर का एक अवयव है जिसके द्वारा हम काम करते हैं या कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये डेफिनेशन होगी इंद्रियों की। ये शरीर का ही अंग है और इससे हमें कोई ज्ञान प्राप्त करना है या कार्य करना है तो इंद्रियों से ही करेंगे, हाथ से करेंगे, पैर से करेंगे, है ना। ज्ञान प्राप्त करना है तो कान से, नाक से, आंखों से करेंगे। मुंह, हाथ, लिंग, गुदा और पैर, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं, नाक, कान, आंख, जीव तथा त्वचा। और शरीर में 5 प्राणवायु भी हैं। प्राणवायु का जिक्र आया यहां पर, तो मुख्यतः प्राणवायु, वायु तो एक ही है, उसको जरूरत के अनुसार कई भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन मनुष्य शरीर के लिए आयुर्वेद या ये जो प्राणायाम वगैरह करते हैं ये इन्होंने इसको 10 भागों में बांटा है। मूलतः प्राणवायु एक ही होती है, परंतु उसकी उपयोगिता के अनुसार कई भागों में इसको बांटा गया है। मानव शरीर में प्राण को 10 भागों में बांटा गया माना गया है। वैसे मैं रात को पढ़ रहा था कि 21 प्रकार के भी प्राण हैं, 28 प्रकार के भी प्राण हैं, बहुत सारे प्राण, लेकिन मुख्यतः प्राण प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं एक ही हैं और जरूरत के अनुसार इसको 10 भागों में मनुष्य शरीर के लिए बांटा गया माना गया है। इनमें 5 प्राण तथा 5 उपप्राण होते हैं, टोटल 10 हो गए ना, तो 10 में से 5 प्राण और 5 उपप्राण। 5 प्राण जो हैं वो इस प्रकार हैं, श्वास लेते समय जो नाक से मुख्य वायु आती है प्राण हो गया, वो जो प्राणायाम करते हैं ना, बचपन में मैं भी करता था, सुना था, तो वो नाक के द्वारा जो वायु लेते हैं उसको मुख्य प्राण वायु कहते हैं प्राण। अपान जो गुदा से बाहर निकलती है, कई दफा गंदी हवा भी निकालते हैं ना तो वो भी नीचे से निकलती है, उसको अपान कहते हैं। समान जो है जो हम खाते हैं ना उसको ठीक ठीक ढंग से पचाती है, या फिर कभी कभी हम डकार लेते हैं है ना, कभी कभी भोजन पच जाता है तो निशानी हो जाती है, ओ ये जो खाया था पच गया, डकार लेते हैं, मुंह से भी निकालते हैं हवा और करते हैं। सो डकार लेना, ये समान बाजू। उदान गले से होकर जाने वाली बाजू, गले से भी बाजू जाती है, कभी कभी तो नाक बंद होता है तो गले से बाहर भी निकालते हैं, अंदर भी ले जाते हैं, और अगर ये गले वाले बाजू जो है कभी बंद हो जाए ना तो दम घुटने लगता है, मर भी सकता है आदमी। और 5वीं सारे शरीर में चक्कर लगाती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, ऑक्सीजन भी पहुंचती है सब जगह पर, और जो भी चीजें हैं सब जगह पूरे पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक सब पहुंचाती है, इससे पूरे शरीर में ये घूमती रहती है। तो ये तो हो गए मुख्य प्राण, और जो उपप्राण बताए गए हैं नागवायु, क्रिकर, कुर्म, देवदत्त, धनंजय। आंखें और मुंह खुलने में सहायक बनती हैं वो है नागवायु, आंखें हमारी खुलती हैं नहीं तो बंद ही रहेंगी है ना। इनके भी अलग अलग देवता हैं, वो भी अलग पड़ेंगे, कहीं अलग अलग अंग के अलग अलग देवता हैं जिससे हमारी आंखें काम करती हैं। अच्छा, क्रिकर बाजू होती है, क्रिकर प्राण, उससे हमारी भूख बढ़ती है और भूख लगती है। कुर्म जैसे कुर्म नाम ही है, कुर्म कछुआ, जो वायु को संकोचन करने में सहायक होती है, जो बाजू मर जाती है उसको इकट्ठा भी कर लेते हैं और बाहर भी निकालते हैं। देवदत्त, कभी कभी हमें अंगड़ाई आती है ना जोर से, बड़े थके होते हैं, बड़े थकते ऐसे करते हैं ना, तो उसे दिखा हुआ आपने, बड़ी भी थकावट हो तो जब ऐसा होता है तो थकावट मिट जाती है, तो देवदत्त वायु विश्राम दिलाती है। ये जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर, मुंह भी खुला जाता पूरा ऐसा करके। 10वीं है धनंजय, ये पालन पोषण में सहायक होती है, और ये सारी वस्तुएं हृदय के मध्य से, जितने भी वायु है ना ये हृदय के मध्य से, कोई कोई कुछ लोग बोलते हैं नाभि से उठती है, लेकिन जो हमारी भगवत गीता है, सॉरी भागवत और भगवत गीता प्रभुपाद जी ने जो बताया है वो हृदय में, हृदय से उठती है, और हृदय में ही भगवान का स्थान है और हमारा भी स्थान है, आत्मा और परमात्मा दोनों, और यहीं से ये वायु प्राण वायुएं उठती हैं ये। अच्छा, ये तो हमने इंद्रियों के बारे में, प्राण के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास किया है। उसके बाद मुख्य विषय में आते हैं अभी हम, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ये शरीर दिया जाता है। हम अपने कर्मों के अनुसार शरीर नहीं ले सकते, हमें कर्मों के अनुसार शरीर दिया जाता है जबरदस्ती, ये लो भैया। वहां पर हमारी चॉइस नहीं है कि हमें आदमी का शरीर चाहिए या देवता का शरीर चाहिए, वो दिया जाता है। कर्मणा देव नेत्रेन जंतुर ही उपतते। 84 लाख जूनिया में शरीर यंत्र के तुल्य है। 84 लाख जूनिया जितनी भी है सारे यंत्र हैं, हमें दिए हुए अलग अलग यंत्र हैं। इस भौतिक जगत में मान देखते हैं ना, बहुत सारे यंत्र बने हुए हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, रेल है, पता नहीं क्या क्या कई यंत्र हैं, घड़ियां हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। तो जो 84 प्रकार के जो योनियां हैं वो यंत्र के बराबर हैं या तुल्य हैं, जो प्रत्येक जीव को मिले हैं। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में रहेंगे तो तकलीफ तो उठेंगे हमारे, यहां पर बार बार मरना पड़ेगा, बार बार पैदा होना पड़ेगा, बीमारी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, कान में दर्द भी होगी, घुटनों में दर्द भी होगी, तकलीफ ही तकलीफ है इस भौतिक शरीर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर, बार बार पैदा हो मरो, माँ के गर्भ में जाओ, है ना। तो ये 84 लाख योनियों में होता है, चाहे कोई मच्छर हो, चाहे कोई हाथी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई देवता हो। जीवन का जो ड्यूरेशन है वो लंबा कम या छोटा हो सकता है, बाकी प्रोसेस सारी योनियों में एक जैसा ही है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान कहते हैं कि क्यों, जो शुरू में जैसे मैंने कहा भगवान हमारे सबके पिता हैं, तो बड़े दयालु हैं वो। जो जो शरीर मिला, नाना प्रकार की हमारी इच्छाएं हुई भोग करने की, वो भी उपलब्ध करा दी। मच्छर को मच्छर का भोग करने का दे दिया, मनुष्य को जो भोग चाहिए जो जो इच्छा है मनुष्य को मिल जाती है, हाथी को जो इच्छा होती है खाने की, वो तो घास फूस और ये पेड़ पौधे खाता, पेड़ खाता है, पेड़ों के तने खाता है, तो ये भगवान सब मुहैया करते हैं। हमारे पैदा होने से पहले हम लेके थोड़ा आए थे, हमारे पैदा होने से पहले ही, इस भौतिक जगत में आने से पहले ही भगवान ने सारा बंदोबस्त कर रखा है। जब हम पैदा होते हैं तो दूध को साथ में लेके आए थे, दूध पीना भी नहीं जानते, पिछले जन्म में कहीं पिया होगा, इस जन्म में तो नहीं पिया, जब पैदा नहीं हुए, अभी हम बाहर माँ के गर्भ में हैं, तो पैदा होते ही दूध पीना भी शुरू कर देते हैं, दूध पहले ही माँ के स्तनों में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान ने सब बंदोबस्त कर रखा है हमारा, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, और फिर अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार सुख दुख मिलता है। कोई बोलते हैं जी भगवान को दुख दे रहा है, इसको क्यों सुख दे रहा है, भैया तुम्हारे कर्म ऐसे थे उसके अनुसार तुम्हें ये शरीर मिला, और ये सुख उठाओ दुख उठाओ, भगवान तो नहीं चाहते कि तुम दुखी रहो, भगवान के धाम में जाकर के रहो। यदि हम सचमुच कर्म बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं तो हमें सारे कार्य कृष्ण भावनामृत में रह करके करने चाहिए। यदि हम ये 84 लाख योनियों के कर्म बंधन में फंसना नहीं चाहते हैं तो हमें जितने भी कार्य हैं कृष्ण को समर्पण करते हुए ही करने चाहिए। भगवद गीता में भी ये कहा गया है, यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। विष्णु के यज्ञ रूप में किया गया कार्य करणीय है, जो भगवान के लिए कार्य करना है वो करणीय है, बाकी कोई भी करने के लिए योग्य नहीं, अन्यथा ये कर्म मनुष्य को इस संसार में बांध देते हैं। जो भी कर्म करोगे, चाहे वो अच्छा कर्म करोगे चाहे वो बुरा कर्म करोगे, वो सब बांधने वाले हैं। इसलिए एकमात्र जो कर्म करना है हमने वो भगवान के लिए करना है। यदि हम इस भौतिक जगत के बंधन से छूटना चाहते हैं तो, और नहीं छूटना चाहते हैं तो ठीक है भैया, जो मर्जी करो, भगवान ने तो बता दिया। महात्मा लोग भी बताते हैं अगर के ये करो ये करो ये करो बंधन से छूटना है तो, और फिर भी हम नहीं मानते हैं तो फिर करो जो उम्मीद कर दो। यदि हम कृष्ण भावना अमृत में रह करके कर्म नहीं करते हैं तो हम बंधन में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, जिस तरह एक रेशम का कीड़ा अपने ही कृमि कोष में बन जाता। रेशम का कीड़ा देखा कभी? रेशम का कीड़ा मैंने बचपन में पाले थे, जब पांचवीं जमात में पढ़ते थे तो सेरिकल्चर वालों एक मेरे पिताजी का जान पहचान था, तो उसने वो छोटे छोटे कीड़े दे दिए, वो शतूत होता है, शतूत के पत्तों पर पलते हैं, तो बहुत पैसे मिलते थे उनको उनके ऊपर। तो मैंने देखा कि कभी हम ध्यान ही देंगे तो वो एक खोल सा बना लेता है और खोल के अंदर कीड़ा वो चला जाता है, वो फिर बाहर नहीं निकलता कई दिन तक बीच में। इसी प्रकार हम भी अपने कर्म बंधनों के जाल में फंस जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। तो इसलिए हमें कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए ही कर्म करने चाहिए, जिससे हम जगत में द्वारा से ना बंधे, संसार से द्वारा ना बंधे। परंतु होता ऐसा है कि हम भौतिक आकर्षण से दूषित होकर बंध जाते हैं। भौतिक आकर्षण भी तो कम नहीं है ना, भौतिक आकर्षण भी तो माया द्वारा बनाया गया है, दुर्गा देवी के द्वारा बनाया गया है, वो भी तो भगवान की शक्ति है, वो कम नहीं है। हम फंस जाते हैं, मम माया दुरत्य, बड़ा मुश्किल है निकलना। हाँ, कृष्ण की जब शरण ले लेंगे तो फिर माया हमें छोड़ देंगी, जाओ बच्चों जाओ कृष्ण के पास जाओ। तो यदि हम इन्हीं चक्रों में रहेंगे फिर 84 लाख जो गेड़े हैं, 84 के गेड़े में फंसे रहेंगे। इसलिए हमें खूब क्या करना है, कृष्ण नामों का जप करना है, कीर्तन करना है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं करना, ये तो करना ही करना है, साथ में जितने भी ग्रंथ प्रभुपाद जी ने दिए हैं उनको पढ़ना अनिवार्य है। अगर पढ़ोगे नहीं ना, एक दिन कदम्ब कानन महाराज उनका एक आया था कोटेशन, उन्होंने लिखा कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही आया, और प्रभुपाद जी तो बार बार बोलते हैं यदि पढ़ेंगे नहीं तो कुछ समय बाद आप चाहे माला जितनी मर्जी जाप कर लो, हम माला जाप कर रहे हैं जी प्रभु, वो तो आपने एक कसम खाई थी मैं माला जाप करनी है, लेकिन कुछ समय के बाद आप निरस हो जाओगे, रूखा महसूस करोगे, शुष्कपन महसूस करोगे, और यदि माला भी जाप करोगे, कीर्तन भी करोगे, भक्तों का सम भी करोगे, साथ में प्रभुपाद जी का ग्रंथ भी पढ़ोगे ना, तो फिर हमेशा तरोताजा रहोगे। ये फैक्ट है, कोई बोले कि मैं तो 16 माला जाप कर रहा हूं डेली लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसका जीवन जो है निरस हो जाएगा, कुछ समय बाद शुष्क हो जाएगा, वो आगे तरक्की नहीं कर पाएगा, वहां पर ही बैठ जाएगा, आगे नहीं जा सकेगा, बड़ा मुश्किल है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी की ग्रंथों को खूब पढ़िए और कीर्तन करिए, माला जाप कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, मंदिर के प्रोग्राम अटेंड कीजिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो शॉर्ट में या कमेंट हो किसी का बोल सकते हैं? नहीं है, ठीक है, फिर धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण।